हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए और समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है, इसलिए अपनी समस्त भौतिक चिंताओं, सोचों और आकांक्षाओं को एक साइड पर रखकर पूरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि जो हम अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथ प्रीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिकाकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सूतिदेवि प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासुदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता माते की जय हो। हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें प्रकृति के तीनों गुणों यानी भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो बता रहे हैं, गुण त्रय विभाग योगो नाम इस चैप्टर का नाम है। और इसमें थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर के विषय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं। पहले पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनय सर्वे परम सिद्धिम् अधोगतम्। भगवान ने इस जो बताने वाले हैं उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भगवान ने बताया कि मैं तुम्हें सर्व जितने भी ज्ञान हैं उन समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा, और जिसे जान लेने के बाद ही किसी को सिद्धि प्राप्त हुई है, मुनियों को भी सिद्धि इस ज्ञान को जानने के बाद ही मिली है। और भगवान ने उसके बाद बताया, इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सा धर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। भगवान ने अर्जुन को कहा कि जब ये ज्ञान तुम्हें पता चल जाएगा, जब तुम इसको समझ जाओगे, तो इस प्रकार आप है ना मेरे जैसी स्थिति को प्राप्त करोगे। कैसी स्थिति की? स्वर्गीय पिनोपजायन्ते। जब संसार उत्पन्न होगा तब तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और जब संसार विचलित होगा तो फिर तुम्हें तुम्हारा क्षय नहीं होगा, क्योंकि जन्म नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है क्षय भी नहीं होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस संसार में प्रकट कैसे होते, सब कुछ कैसे आता है। तो भगवान ने बताया यानी कि इस संसार में जो कुछ भी है उसको उत्पन्न करने वाला बीच में हूँ, इस बात को भगवान ने श्लोक नंबर 3 में बताया। मामा योनि महत्तम तस्मिन् गर्भं धराम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। के ब्रह्म नामिक जो भौतिक वस्तु है, उस जो भी संसार में है उसका उसको मैं गर्भस्थ करता हूँ। तस्मिन् गर्भः ददामि हम कि मैं उसको गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीव उत्पन्न होते हैं, यानी कि संसार में जो कुछ भी नजर आ रहा है उसको उत्पन्न करने वाला। भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 4 में बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहम् बीज प्रदः पिता। कि जितनी भी योनियां तुम नजर आ रही है तुम्हें, तुम यह समझो कि समस्त प्रकार के जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म किसके लिए हुआ, कैसे हुआ, संभव हुआ है मेरे द्वारा, क्योंकि मैं ही सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। अहम बीज प्रदा पिता। बहुत ही सुंदर भगवान ने बताया। अब भगवान ने ही गर्भस्थ किया पृथ्वी को और भगवान ही बीज देने वाले पिता हैं। फिर यहाँ पर आके संसार में जीव परेशान क्यों होता है, क्या मतलब ऐसा क्यों होता है कि वो भगवान से विमुख हो जाता है, उसके कारण भगवान बताते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 5 में, रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निभत्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। कि महाबाहो, इस संसार में जब शरीरधारी आता है तो क्योंकि यह प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है वो 3 गुणों से युक्त है। कौन कौन से है? सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो ये तीनों गुण जो है इनसे बंध जाता है जीव, इन तीनों गुणों के शिकंजे में आ जाता है और वो उसे बांध देते हैं। कैसे बांधते हैं? भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 6 में, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन भत्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। क्योंकि सत्वगुण प्रकाश देने वाला है और है ना इससे ज्ञान उत्पन्न होता है, इससे सुख उत्पन्न होता है, इसलिए मनुष्य सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाता है। सुख तथा ज्ञान के भाव से उसको बंध, उसको और भी चाहिए होता है, इसलिए उनसे बंध जाता है। और आगे भगवान 7 में कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निभत्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिन। और क्योंकि रजोगुण जो होता है वो बहुत सारी असीम, जिसकी कोई अनलिमिटेड तृष्णा और आकांक्षाएं होती हैं, इसलिए देहधारी सकाम कर्मों से बंध जाता है, कंटिन्यूस कर्मश हो जाता है। और आगे 8 नंबर में भगवान ने बताया, तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निभत्नाति भारत। यानी कि जो अब तत्वगुण और रजोगुण तो बांध दिया, लेकिन तमोगुण जो है वो पूरा अज्ञान से उत्पन्न होता है और ये जो है वो इस गुण के प्रतिफल क्या है, पागलपन, आलस्य, नींद और बद्ध जीव को इसी चीजों से बांध देते हैं। और भगवान ने आगे बताया, सत्वम सुखेन संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयच्युत। क्योंकि सत्वगुण सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण ज्ञान को ढक देता है और पागलपन से बांधता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 10 में, రజస్తమశ్చాభి భూయ సత్వం భవతి భారత రజసత్వం తమశ్చైవ తమసత్వం రజస్తథ. యాని కభీ సత్వగుణ ఔర్ రజోగుణ కో దబానే సే తమోగుణ ఊపర్ ఆ జాతా హై, కభీ తమోగుణ ఔర్ రజోగుణ కో దబా దేతా హై ఔర్ సత్వగుణ ఆ జాతా హై, కభీ రజోగుణ ఔర్ తమోగుణ को दबाने से सत्वगुण आ जाता है, कभी क्या होता है तमोगुण और सत्वगुण रजोगुण को परास्त कर देते हैं. यानी कि इस प्रकार क्या होता है, आपस में सबकी कंपटीशन चलती रहती है. वो बोलता है मैं आगे जाऊं, वो बोलता है मैं आगे जाऊं. और आगे भगवान 11 नंबर में कहते हैं सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या वृद्धिम सत्वमुत्युत. कि भगवान ने बताया फिर इस तरह से, क्योंकि कंपटीशन चलता रहता है, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि सत्वगुण अभी विकसित हुआ है. तो सत्वगुण की अभिव्यक्ति कैसे होती है कि जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होता है. यानी कि सारी चीजों से, हम अपने सारी कर्म इंद्रियों से, अपने ज्ञान इंद्रियों से सिर्फ सत्वगुण में रहकर कार्य करते हैं, शुद्ध ज्ञानमय कार्य करते हैं, तो समझ जाना चाहिए सत्वगुण आज जीत गया. और आगे भगवान कहते हैं लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्तः रजस्येतानि जायन्ति विविद्धि भरतर्षभ. जब रजोगुण ज्यादा उन्नति होती है उसकी, जब वो जीतता है तो क्या होता है, तो अत्यधिक आसक्ति सकाम कर्म और गहन उद्यम, वो ज्यादा कर्मश हो जाता है और इससे पता चलता है कि वो सत्वगुण में है. और रजोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण 13 में बताते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि गुरु नंदन. अब तुम्हें एक गुरु नंदन तुम्हें जानना है, अगर तमोगुण का होता है तो समझ लो जब अंधेरा जड़ता पागलपन और मोह प्रकट होता है तो समझो तमोगुण आगे बढ़ गया आज. और आगे भगवान श्री कृष्ण 14 में कहते हैं कि देखो अब आपके ऊपर जो जो गुण हावी हो जाएंगे ना, उस हिसाब से आपको दूसरा जन्म मिलेगा. किस तरह से, कौन से जन्म में आप लेते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर गुण कि आप उस टाइम पर आप किस मूड में होते हो, कौन से गुण में होते हो. तो भगवान 14 में कहते हैं यदा सत्ति प्रवृत्ति तु प्रलयम याति देह तदुत्तम विराम लोकान अमलान प्रतिपद्यते. यदा सत्वे प्रवृद्धि तु प्रलयम याति देह, यदि कोई देह देहधारी सत्वगुण में मरता है तो तदुत्तम विराम लोकान, तब वो उत्तम लोकों में जाता है. और अमलान प्रतिपद्यते, जो जहां पर कोई भी अमल मतलब मल नहीं होता है, शुद्ध लोक होते हैं उसमें जाते हैं, कौन सत्वगुणी. और आगे 15 में कहा रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते. रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते. अगर रजोगुण में मरोगे तो ऐसे ही सकाम कर्मी लोगों के अंदर ही मरोगे, मतलब जो बहुत ज्यादा कर्म ये चाहिए वो चाहिए ऐसे लोगों में पैदा होना पड़ेगा. और तथा प्रलीनस्तमसी, और जब तमोगुण में मरोगे तो मूढ़ योनी सी जायते, कोई तुम्हारा हल नहीं है, तुम्हें फिर जानवर बन के निकलना पड़ेगा क्योंकि तमोगुण में है, अज्ञानता में है. और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 16 में कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलम्. और जो पुण्य कर्म का फल जो होता है, अगर आप सत्वगुण में रहकर अच्छा काम करोगे तो शुद्ध फल मिलेगा और वो सात्विक कर्म कहलाता है. रजोगुण में किए हुए कर्म का फल जो होता है वो क्या होता है, कर्म का फल दुख होता है, चाहे वो करने के टाइम पर क्यों ना हो, चाहे मिलने के टाइम, मिलने के बाद क्यों ना हो. रजोगुण में आप जो करोगे आपको ऐसा फील होता है कि वो उससे मुझे सुख मिलने वाला है, लेकिन भगवान तो ये कहते हैं रजस्तु फलम दुखम, एकदम भगवान ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि जब तुम रजोगुण में रहकर कार्य करोगे तो तुम्हें दुख अनिवार्य मिलेगा। अब लोग फिर भी रजोगुण में कार्य करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, शास्त्र खोल के नहीं देखते कि भाई किसमें कार्य करो, में लिखा हुआ साफ साफ रजस्तु फलम दुखम, रजोगुण में कार्य करोगे तो डेफिनेटली दुख मिलेगा, और अज्ञानम तमसा फलम, और अगर आप तमोगुण में रहकर काम करोगे तो मूर्खता, उसका प्रतिफल मूर्खता होगी। भगवान श्री कृष्ण 17 में बताते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसौ भवतो ज्ञानमेव च। कि सत्वगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञानता प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। इतना भगवान बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, चलो अब मैं उसे ये भी बता देता हूँ कि जो भी गुण आप विकसित करना चाहो कर सकते हो, और ये भी बता देता हूँ कि कौन सा गुण विकसित करने के बाद आप कहाँ पहुंचोगे। और भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 18 में कल हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थो मध्ये तिष्ठति राजसा जरन्य गुण वित्तस्था अरव गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थो, यानी कि अगर आप सत्वगुण में स्थित होगे तो ऊपर के लोकों में जाओगे। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अगर रजोगुण में होगे तो सेंटर में अर्थात पृथ्वी लोक में आओगे। जगन्य गुण वित्तस्था, और जो बहुत ही जगन्य बहुत ही घृणित कर्म करोगे तो अरव गच्छन्ति तामसा, तो बेशक तुम्हें नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा या फिर जानवर बनकर उत्पन्न होना पड़ेगा। यहाँ तक बताने के बाद भगवान ने सोचा कि मैंने अर्जुन को पूरा का पूरा गुणों के विषय में बता दिया है और अब उसे समझ में आ गया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 19 में अर्जुन से ऐसे मतलब बताया कि ये जिसको समझ में आ गया उसका क्या होगा। अब यहाँ तक तो देखो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा ना, मैंने आपको एक एक श्लोक एक एक वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और इसको समझने के बाद क्या मिलेगा। अभी मैंने वापस से शुरू से रिपीट किया, आप सारे क्वेश्चन जितने जितने क्यूरीज आपके उत्पन्न हो रहे थे सबको क्लियर किया, सब कुछ बताया ना हर श्लोक के बारे में। अब भगवान कहते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 19 में कहते हैं, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टुमुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोधिगच्छति। नानम गुणेभ्य कर्तारम, नान्य मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरा, गुणेभ्य मतलब गुणों के अतिरिक्त, गुणों के अतिरिक्त और कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, सिर्फ गुण ही ऐसे हैं। कैसे? कर्तारम यदा, और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कर्तारम यानी जो करता है, यदा मतलब जब भी, दृष्टुम दृष्टानुपश्यंती, दृष्टानुपश्यंती मतलब देखने वाला, अनुपश्यंती ठीक तरह से, यानी कि अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जब कोई अच्छी तरह से यह जान लेता है समझ लेता है कि गुणों के अतिरिक्त कोई और नहीं है, गुणेभ्यश्च परम वेति, गुणे मतलब गुणों से, गुणेभ्य मतलब च तथा परम वेति, परम मतलब दिव्य जानता है, दिव्य परम वेति मतलब जानता है, मत भाव मेरे दिव्य स्वभाव को स अधिगच्छति प्राप्त होता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं, यानी कि जो भी कार्य हो रहे हैं चाहे सत्वगुण में हो रहे हैं चाहे रजोगुण में हो रहे हैं या तमोगुण में हो रहे हैं, जीव के द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं और जब मतलब वो सब कौन कर रहा है, गुणों तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, वो गुण ही करवा रहे हैं आपसे। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है और जब उसे ये पता चलता है कि ये दैवी ये सब गुणमयी, ये सारी गुणमयी जो प्रकृति है वो किसकी है, भगवान श्री कृष्ण की है, जब उसको समझ लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है। अब भगवान जो है वो इन तीनों गुणों से परे है, मैं उसका अंश हूँ, ये गुण तो प्रकृति की क्रिया है तो मुझे भी उसके पास आना चाहिए। ये जब जैसे किसी इंसान को या किसी जीव को ये रियलाइज हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मद भावम सोधिगच्छति, फिर क्या होता है, वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अब श्रील प्रभुपाद जी उसे बहुत ही सरलता और सुंदरता से हमें बताएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से सारे कार्यकलापों को लांग सकता है। यानी कि इसके लिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपके जो ये ना मानसिक चिंतन कार्य नहीं करेगा, आपकी स्टडी कार्य नहीं करेगी, आपको बहुत ही जो शुद्ध महापुरुष हैं उनकी शरण लेनी पड़ेगी। जब कोई शुद्ध महापुरुष की शरण लेकर आप प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों को समझोगे तो उसे लांग लोगे। आप सब बहुत लकी हो क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी साक्षात आपको गाइड कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद की शरण में रहकर उनकी धोती को पकड़ना है बस, और हम पार हो जाएंगे। आगे है, वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होते हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। यानी जिन्हों जो वाकई में भगवान श्री कृष्ण के सरेंडर होते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में होते हैं, जो भक्त होते हैं, क्योंकि वास्तविक गुरु तो कृष्ण है। अब जिसने कृष्ण की शरण ली है वही इस प्रकृति के विषय में भी आपको बता सकता है, क्योंकि ये सारी कृष्ण की प्रकृति है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों के विषय में सीखना होता है, उनसे ही हम सीख सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, मनुष्य का जीवन खूब मार्ग में चला जाएगा अगर नहीं करते हैं। अब कुछ लोग नहीं समझना चाहते हैं। अब कल है ना, हम लोग गुणों के विषय में क्लास कर रहे थे तो बोलते थे, अब भगवान की कोई बात बताओ ना, अब भी गुण गुण हम लोग को नहीं समझ में आते, सत्व गुण में ये होता है, रजोगुण में ये होता है, कोई भक्ति की बात बताओ। अरे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर तुम गुणों को नहीं पार करोगे, जो गुणों को पार कर लेता है वही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, और अगर तुम इन गुणों में फंसे रहोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता तुम्हारे मुक्त होने का। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बोलते हैं, अगर नहीं समझोगे तो आपका मनुष्य जीवन कुमार्ग में चला जाएगा। तो हमें ये सब समझना होता है ना, बस खाली स्टोरी स्टोरी बतानी होती है कि भाई ये स्टोरी में ये हुआ था, भगवान ने ये किया था, ये यहाँ चलो, लेकिन फिर भी हमें सिद्धांत तो पता होना चाहिए ना। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपने इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से अपनी भद्दावस्था होने के बारे में जान सकता है। क्योंकि जब आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि आप यहाँ पर कैद हो, जब आपको अपने भौतिक शरीर, इंद्रियों और प्रकृति के गुणों के विषय में कोई ज्ञान नहीं होगा, जब आपको ये पता नहीं होगा कि मैं जेल में हूँ, जब आपको ये पता नहीं होगा कि मैं रोगी हूँ, तो कैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे या कैसे यहाँ से स्केप होना चाहोगे। अगर आप मुक्त चाहते हो तो पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप बंधन में हो। तो ये जब गुणों के विषय में नहीं पढ़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। पर आगे भगवान कहते हैं, वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर उसे पता नहीं होता है तो फिर वो गुणों के शिकंजे में चलता ही रहेगा। कभी सत्व गुण में कार्य करेगा, कभी रजोगुण में करेगा, कभी तमोगुण में रहकर कार्य करेगा। लेकिन जब उसे ये पता चल जाएगा कि मैं गुण किस तरह से मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, क्यों मैं गुणों के कंट्रोल में आ रहा हूं, तब फिर क्या होता है, जान लेने पर, देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर लेता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक होता है। अब आध्यात्मिक जीवन के लिए तो वो स्थिति प्राप्त करना जरूरी है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आप कार्य करते हो ना, जीव जो कार्य करता है उसका उत्तरदायी, उसका कर्ता वो स्वयं नहीं होता है, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है। यानी कि वो क्योंकि गुणों के अंदर वो बंधा हुआ है, इसे वो बाय फोर्स गुण उससे करवा रहे होते हैं, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित है। अब क्योंकि वो एक खास किस्म का शरीर उसको मिला हुआ है, अब जैसा शरीर है और उस शरीर के ऊपर जैसे गुण हावी हो रहे हैं तो उसके हिसाब से उसको कार्य करना पड़ता है। अभी ना जैसे कोई कोई जानवर के शरीर में होता है, कोई तमोगुणी सारे होंगे वो, तो तो तमोगुण में रहकर ही कार्य करेंगे, वो कहाँ से यज्ञ दान तपस्या करेंगे। और जो है ना, जो भी जो जिसको शरीर मिला होता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्योंकि यह विशेष प्रकार का शरीर स्थित होता है। अब शरीर किस चीज से बना हुआ है? प्रकृति से बना हुआ है। 24 तत्व है और उसमें गुण भी है, तो गुणों के हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है, अब जो भी शरीर है तो कोई ना कोई गुण उसको संचाल कर रहा होता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती है, तब तक वह यह नहीं समझ लेता है कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। यानी कि श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि आपको किसी न किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता ग्रहण करनी पड़ेगी। आप अपनी तरफ से ये नहीं समझ सकते कि आपकी स्थिति क्या है, नहीं समझ सकता है कि वास्तव में कहाँ स्थित है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पर ये प्रश्न करोगे कि भाई हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो कोई आध्यात्मिक सहायता करने वाला, मान्यता रखने वाला व्यक्ति नहीं है। देखो भगवान श्री कृष्ण, आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपकी हर चीज में सहायता करूंगा। यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। आप जिस श्रद्धा को, जो भी श्रद्धा आपके हृदय में होगी और जो इच्छा करोगे, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। आपको भगवान के पास एकदम सिंसियरिटी और एकदम सीरियस होके जाना है कि भगवान हम निकलना चाहते हैं इन गुणों के चुंगल से, बचना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई भी आध्यात्मिक संगति नहीं है, डिवोटी एसोसिएशन नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो भगवान आपको प्रोवाइड करेंगे। भगवान सक्षम है। जब चोर की संगति करने के लिए उसको चोर मिला देते हैं, तो क्या आपको आध्यात्मिक संगति करने के लिए कोई आध्यात्मिक प्रमाणिक गुरु से नहीं मिलाएंगे? गुरु ने क्या सोचा था घर से निकलते हुए? क्या ये सोचा था कि मैं नारद मुनि से जाके दीक्षा लूंगा? उनका सिर्फ यही हृदय में एक ही विश्वास था कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान ने स्वयं भेज दिया नारद मुनि को। संकल्प तो करो, इच्छा तो करो, भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। भगवान को भगवान समझ कर तो देखो, ये तो सोचो कि भगवान सुनेंगे। फिर भगवान सुनेंगे। भगवान ने साफ कहा 4.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ति तं तथैव भजामि। तुम जिस भाव से मेरी शरण में आओगे, मैं उसी तरीके से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम चीट होना चाहते हो तो मैं तुम्हें चीटर लोगों से मिलाऊंगा। अगर तुम वास्तविक ज्ञान से अवगत होना चाहते हो तो आपको वही चीज प्रोवाइड करूंगा। भगवान कहते हैं तामेव विरद्धाम्य हम, जो चाहोगे वो सब मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं और कोई तरीका नहीं है। आपको एक प्रामाणिक गुरु की संगति, एक प्रामाणिक गुरु होगा जो परंपरा से आएगा, जो वास्तविक गुरु होगा, वही आपको समझा सकता है और समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना में स्थित हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हो, भगवान के भक्त हो जाते हो, तो गुणों के चमत्कार से नियंत्रण, गुणों आपको काबू में नहीं करेंगे। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वो प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। कब बताया? 7.14 में। मेरा प्रिय श्लोक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। वैसे तो मेरी इस माया को पार करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे उसे सरलता से पार कर जाते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पूरा अध्याय जो है इसी श्लोक पे जाएगा। और भगवान आज श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक का जिक्र कर ही दिया कि वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घट जाता है। यानी कि जिसे ये पता चल जाता है कि वस्तुएं क्या है, निर्माता कौन है, और गुण क्या कर रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रकृति का जो प्रभाव होता है उससे उसको है ना कर्मज घटता जाता है और आगे वो अपनी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 20 में बताते हैं, 14.20 भगवान कहते हैं, गुणानि तानतीत्य त्रीन देहि देह समुत्थवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तौ मृतमुष्णुते। भगवान कहते हैं गुणानि तानतीत्य, यानी कि गुणान जो गुणों से एतान इन सब, कौन से गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, अतीत्य जो लांग देता है, त्रीन यानी जो इन तीन गुणों को लांग देता है, गुणाने तान त्रीन देही देह समुद्भवान, देही मतलब शरीरदारी, देह मतलब शरीर, समुद्भवान उत्पन्न, यानी कि ये तीनों गुण कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर जो प्रकृति से बना उससे उत्पन्न हुए ना, तो जब जीव तो भगवान की परा प्रकृति है, तो इन तीनों गुणों से जब वो लांग देता है तो भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, जो भगवान ने टू श्लोक नंबर 2 में बताया था ना कि इन इस ज्ञान को जानने के बाद तुम्हें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा और मृत्यु के समय तुम्हारा नाश नहीं होगा, तो भगवान इसी बात को वापस बता रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा दुख है, जन्म मतलब जन्म लेना, मृत्यु मतलब मरना, जरा मतलब बुढ़ापा, दुख है मतलब कष्ट, विमुक्त यानी कि उन सब से मुक्त हो जाएगा, अमृतम, अमृत मतलब कि अमृत अश्नुते, अमृतम अश्नुते का मतलब होता है भोक्ता, अमृत मतलब मृत मतलब जो मर जाता है जन्म लेने के बाद जिसकी मृत्यु हो जाती है मृत, और अमृत मतलब जो नहीं मरता है, और यानी अमृत को भोगता है, यानी कि इस स्थिति को भोगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन तीन गुणों को लांगने में समर्थ हो जाता है, यानी कि जब उसे ये पता चल जाता है कि प्रकृति के तीन गुण मुझे अटैक कर रहे हैं, और कोई गुरु महाराज की शरण में जाता है और इन तीनों गुणों को लांगने में समर्थ हो जाता है, तो वो हो जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्त, यानी कि जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा और उनके कष्टों से विमुक्त यानी कि मुक्त हो जाता है, अमृतम अश्नुते यानी कि मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है, अमृतम अश्नुते इसी जीवन में, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है, यानी कि उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी दिव्य गुरु की शरण में चले जाते हो, आध्यात्मिकता अगर आपको प्राप्त हो जाती है, आपको ये बोध हो जाता है कि आप ये शरीर नहीं हो, तो इसी जीवन में कृष्ण भावना में भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ देहदारी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो शुरू वाली लाइन में गुणानि तानतीत्य त्रीन देही देह समुद्ध, देही मतलब पिछला प्रभुपाद जी बोलते देही का अर्थ है देहदारी, यानी कि हम देहदारी वास्तव में जीव है लेकिन देह को धारण किया है, तो इसलिए हमारा नाम देही होता है। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, वास्तव में हम जीव है इस शरीर के अंदर रह रहे हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, लेकिन अभी हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं और हम क्या बोलते हैं कि हम ये शरीर हैं, हमें माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं ये हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, इस तरह की बात, ये सारी चीजें किससे डिपेंड करती है, शरीर से डिपेंड करती है। आत्मा तो सर्वज्ञ, आत्मा कहीं किसी का नहीं होता है, आत्मा केवल भगवान का अंश है, आत्मा केवल भगवान का दास है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की जब उन्नति होती है तो फिर ये प्रकृति का जो प्रभाव होता है उससे वो मुक्त हो जाता है, उससे ये रियलाइज हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख भोग कर सकता है, फिर उसको इस शरीर के कष्ट जन्म जरा मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ये सब परेशान नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। जो भगवान की शरण में जाता है, जो गुरु महाराज प्रामाणिक गुरु की शरण में जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माम उपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझे मेरा अगर जिसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और श्रील प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि क्या होता है कि उस शरीर के बाद उसका वैकुंठ में जाना निश्चित है, जब भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है एक प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उतार सकता है। दूसरे शब्दों में अब देखो, बोला मरने के बाद तो वो वैकुंठ में जाएगा ही, लेकिन जब तक वो संसार में होगा तो भी उसे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। कैसे? दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भाव पाठ से मुक्ति का संकेत है। और अभी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी खास बात बताते हैं कि जब आप कृष्ण भावना में स्थित रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो ना, तो ये आपकी वास्तविक स्थिति है। विग्रह विग्रह नहीं, साक्षात भगवान है। और जब भगवान की सेवा कर रहे होते हैं तो वही जो हमारा वास्तविक स्वरूप होता है, वही हमें यहाँ पर ही उसका रियलाइज कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं कि हम अपनी वास्तविक स्थिति में आ गए। फिर शरीर के साथ चाहे जो भी होता है उस वो हमें मतलब टच नहीं करता, हमें डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि हमें पता होता है कि हम तो भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उस आध्यात्मिक अनुभूति जो होती है वो शरीर के अंदर ही हमें रहते हुए हो जाएगी। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। बोला कि अभी तो आप 14 पढ़ो, जब आप 18 पढ़ोगे तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से भगवान बताएंगे। अभी तो फिलहाल 14 में हो, तो फिर आपको क्या समझना चाहिए? गुणों के विषय में समझना चाहिए। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। यानी कि आपको जब लगे ना कि ये कोई भक्त नजर आए ना, क्योंकि भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति हित्वा, हाँ भक्ति का मतलब होता है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूप व्यवस्थिता। मुक्त होने का क्या मतलब है कि आप दूसरे सारे रूपों से मुक्त होकर, प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, और यानी कि आपको अपना वास्तविक स्वरूप याद आ जाए। कौन सा स्वरूप? जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्यता। और जब मनुष्य भक्ति करता है, अब समझो मरा नहीं है लेकिन संसार में रहकर ही भक्ति कर रहा है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो ही वो भक्ति कर सकता है, क्योंकि वो उसकी वास्तविक स्थिति है। अन्यथा रूपे स्वरूप है न व्यवस्थिता, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। किस स्वरूप में? कि मैं तो भगवान का दास हूँ, तो फिर वो इन गुणों से पार हो जाता है। अब यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा समझा दिया। और कल भगवान को ऐसा लगा कि ये तो मैंने सारा का सारा समझा दिया, लेकिन जैसे मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अपने हिसाब से समझा देती हूँ, फिर आप कैसे क्वेश्चन करते हो। तो कल अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक नहीं बल्कि तीन तीन क्वेश्चन एक श्लोक में करेंगे, और हम देखेंगे कि भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं। यहाँ तक पहले समझ लेते हैं और कल हम पढ़ेंगे अर्जुन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तब तक के लिए आप सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।